ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो मामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रभ्रजन्तमनुते तमपेमकृत्य द्वैपायनो विरहकातर्याय पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेहो तं सर्वभूतलिनः तवैवास्मि न जीवां त्वया विना इति विज्ञेयराधि तन्मय मां भक्त्या विहीन अपराधरक्षे चित्ता सकामावितं कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते सप्रथम में अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा दंडवत्म की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडोत्पन्न की ज्ञापन करता हूँ। कल रामानंद जी ने कहा स्वधर्म त्याग यही साध्य सा स्वरूपतः और कर्म फलों को त्याग करके जो लोग हमारा भजन करते हैं वही साध्य सार है। और इसके लिए दो उदाहरण दिए, अज्ञा एवं गुणान दोषान मया दृष्टान स्वकाम धर्मान संतज सर्वान माम भजे सच उत्तम, और एक दिया सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरण भोज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मई मूच। महाप्रभु जी ने सुनकर के इस षडविधा शरणागति को भी और स्वधर्म को प्रत्याग करके जो हमारा भजन करते हैं उनकी अपेक्षा भी उनको भी बाह्य कहा। स्वरूपानंदी ने क्या है
स्वरूपानुबंधी,
हाँ स्वरूपानुबंधी ये नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई भी सेवा की बात नहीं है बल्कि भक्ति के लिए एक सोपान मात्र है। राय रामानंद जी सुन करके जब उन्होंने कहा यो बाह्य, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्वसद्य सा। राय रामानंद पहले कर्म मिश्रा भक्ति को बतलाया और यहाँ पर ज्ञान मिश्रा भक्ति को कह रहे हैं, और उसके लिए उदाहरण दिया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षी समस्त सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते परा। यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया जाए, ज्ञान मिश्रा भक्ति किसको समझते हैं? ज्ञान के साथ में मिली हुई जो भक्ति है, ज्ञान के साथ में मिली हुई भक्ति एक है और भक्ति से मिला हुआ ज्ञान एक है। भक्ति से मिला हुआ ज्ञान वो तो कुछ ऊपर है और ज्ञान से मिला हुआ भक्ति ज्ञान की भक्ति चेटिका है, भक्ति अपना फल देकर के अंतर ध्यान हो जाएगा, किंतु उससे वो श्रेष्ठ है। और ग्यारहवीं भक्ति से कहने से क्या समझ में आता है, तीन प्रकार के ज्ञान हैं, तत्पदार्थ का ज्ञान, तन पदार्थ का ज्ञान और जीव और ब्रह्म ऐक्य एक ज्ञान। तीसरा जो जीव और ब्रह्म ज्ञान का ऐक्य है, यह भक्ति का विरोधी है, इसलिए इसको तो संपूर्ण रूप से छोड़ ही देना है, क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान ही लुप्त हो जाता है, संबंध ज्ञान रहता है नहीं। तो संबंध ज्ञान नहीं है तो सेवा की वासना भी कहां से आएगी, इसलिए इसको छोड़ो। और तत्पदार्थ का ज्ञान और त्वन पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ माने भगवत तत्व का ज्ञान, जीव तत्व माया तत्व ये सब की जानने की जरूरत होती है। ऐसा ज्ञान जो तत्पदार्थ का ज्ञान है और त्वन पदार्थ का ज्ञान है, तत्व माने क्या, भगवत तत्व, भगवत तत्व इसके अंतर्गत में जीव तत्व माया तत्व सभी कुछ आ जाए, इसलिए ये कुछ कुछ सहायक है, कुछ हद तक पहले प्रारंभ में ये जरूरत होती है, किंतु अंत में इसकी भी जरूरत नहीं होगी, ये आगे हम लोग बतलाएंगे। इन तीनों ज्ञानों से जो शून्य रहित, इन तीनों से मिश्रित भक्ति तो हो गई ज्ञान मिश्रा भक्ति, और तीनों से अमिश्रित हो वो उत्तमा भक्ति। इसमें दिया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परां। इसमें ब्रह्मभूत माने जब ब्रह्मभूत जीव हो जाता है, उसके छह लक्षण हैं, आत्मा अपहत पापमा, पाप नहीं जिसमें, बीजरो जिसमें वृद्धावस्था नहीं, बीजरो विषो को और अपिपाशु क्षुधा तृष्णा इत्यादि काम इत्यादि भोग, ये सब नहीं है, तो उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता में अनावृत चैतन्य को कहते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्म अथवा कृष्ण अनावृत चैतन्य है, जीव भी जब अनावृत चैतन्य हो जाता है तो उसको ब्रह्मभूत कहते हैं, उसका लक्षण ये सब है। अंडरस्टैंड अगेन, ब्रह्म अनावृत चैतन्य इज अनकवर्ड विथ, अनकवर्ड चैतन्य जीव ऑल्सो इफ ही बिकम्स लाइक दैट। जब जीव अनावृत चैतन्य हो जाता है, ब्रह्म में मिलता नहीं है, किंतु ये भी अनावृत माया के द्वारा आवृत नहीं रहता, ऐसा जीव हो जाता है जब, न सोचति न कांक्षति। कोई चीज प्राप्त होकर के नष्ट हो जाए तो सोचक शोक नहीं करता। किसी चीज भी चीज यदि आ गया और वो नष्ट हो गई चीज, भाई बंधु धन संपत्ति और सब कुछ, उसके लिए शोक नहीं करता। न कांक्षति, और जो चीज नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है, अभिलाषा नहीं करता है। समस्त सर्वेश भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो सम रहता है, वो ऊपर के विचार से नहीं चलता। ये लंगड़ा है, लूला है, गोरा है, काला है, ये सब विचार नहीं, आत्मदृष्टि से चलता है। आत्मदृष्टि से अष्टावक्र को जानते हो? एक समय अष्टावक्र अपने हिमालय के आश्रम से जनकपुरी में महाज्ञानी जनक जी के दरबार में आए और उसको देख करके उसका टेढ़ापन, सब लोग हो करके हंस उठे। जनक जी सबको हंसते हुए देख करके ये भी हंस दिए। तो वो भी अष्टावक्र भी लाठी रख करके और बड़े जोर से हंसने लगे। तो राजा जयंत ने पूछा, ये लोग तो हंस रहे हैं आपके अंग के टेढ़ापन पर, कुबड़े पर, आप किस लिए हंस रहे हैं? तो हंसना नहीं रहा हूं, रो रहा हूं। मैं महाराज जनक के सरवार में आया था, सुना था जो बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, सब प्राणियों में सम हैं, किंतु सब चमार मोची हैं। चमार माने शू मेकर। वे लोग ये देखते हैं कि अच्छा चमड़ा है कि कोई खराब चमड़ा है, इनको ज्ञान है। आत्म तत्व का ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं, इस सभा में सभी ऐसे ही चमार मोची बैठे हैं, वहां पर बैठने की कोई जरूरत नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं आएगा। जब चलने लगे, महाराज जनक उनके चरणों में गिर गए, क्षमा मांगा, क्षमा मांग करके तब फिर उनको बैठा। ये तत्व ज्ञान है, समदर्शी होते हैं। जागतिक कलापन या गौरवर्ण का या बुद्धि और ये सब की कोई भी आत्म तत्व में विचार नहीं होता है। विचार होता है उसका स्वरूपानुबंधी गुण जो है उस पर विचार होता है। भगवत तत्व को जानता है, भगवान की कथा जानता है तो सब ठीक है, और नहीं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है जगत का। तो समस्त सर्वेश भूतेषु यदि ऐसा है, मद भक्ति लभते परा, तो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यहां पर ब्रह्मभूत जो ज्ञान है, ये साधन तो उच्च कोटि का नहीं है, किंतु एक बात है इसमें, उदाहरण इसलिए दिया, इसमें कुछ संभावना है पराभक्ति के लिए। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति, इसलिए प्रेमा भक्ति होने की संभावना है यदि साधु संग हो जाए तो, और अपराधी नहीं हो तो। वृंदावन के साधुओं में, मायावादियों में, अद्वैतवादियों में, ज्ञान के साधकों में कुछ चांस रहता है, वे भागवत का पठन पाठन करते हैं और भगवान के चरणों में अपराध नहीं करते हैं, इसलिए उनको साधु संग होने की संभावना है, इसलिए इसको कहते हैं जो प्रेम भक्ति। किंतु हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु यदि ऐसा हुआ, कोई वृंदावन के रहने वाले साधु लोग, अद्वैतवादी लोग जो ज्ञान के साधक हैं, साधन कर रहे हैं, और बाई चांस वहां पर किसी संत से मिल गए, और संत के मिलने से क्या हुआ, भगवान की मुख से, उनके मुख से हरि कथा यदि सुना, तो साथ ही साथ में उनको प्रेमा भक्ति होने की संभावना है, इसलिए इसको बतलाया। इसमें एक और बात है, इस श्लोक की व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, जी गोस्वामी ने भी किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो जिस प्रकार से मांस माने कलाई, कलाई होती है ना, कलाई उनो मूग द मूग उड़द की दाल, मूग हरी हरी या पीली पीली मूग होती है, या उनकी भूसी हो और उसमें एक स्वर्ण कणिका उसमें मिल जाए, तो कुछ दिनों के बाद में ये मूग और उड़द और उसकी भूसी गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, चाहे एक वर्ष दो वर्ष चार वर्ष में गल जाएगी, किंतु स्वर्ण का जो कणिका है उसमें मिला हुआ है तब तक मालूम नहीं होता है, वो देखा नहीं जाता, वो मालूम पड़ता है जैसे वैसे ही मूग का भूसी या दाना या कुछ है पीली, या सरसों पीला होता है, उसके साथ में मिल जाए, कहीं आग लग गई तो क्या होगा, वो सब जल करके राख हो जाएंगे, किंतु स्वर्ण कलिका तो वो गलेगी नहीं, और न जलेगी ही, वो पीछे से विकसित हो जाती है। ऐसे ही यहां पर जो ज्ञान मिश्रा भक्ति कहा और उसमें भी कहा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, ये शोक कुछ नहीं करते हैं और कुछ इच्छा भी नहीं करते, तो वो ब्रह्म एक ज्ञान की इच्छा भी नहीं करते हैं जो लोग, और संतों से मिलते हैं वृंदावन के, और संतों के मिलने से उनकी हरि कथा सुनते हैं, तो स्वर्ण कड़ी क्या रहती है वो तो विकसित हो उठती है, और साथ में ब्रह्म एक ज्ञान जो होता है वो सब नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। कैसे होता है, अपराधी नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का या भागवत के प्रति या भक्तों के प्रति या भक्तों के चरित्र के प्रति कोई अपराध नहीं होता, प्रहलाद चरित्र और दूसरे चरित्रों को, गोपियों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं, और सुनने से क्या होता है, उनके वो जो उज्ज्वला जो भक्ति है कणिका, वो तो भगवान की संबित और ह्लादिनी की वृत्ति है, भक्ति माने वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाती है अपराध होने से, और अपराध ना हो तो वो समुज्ज्वल होकर के उसको प्रेमा भक्ति, इसलिए संभावना अर्थ में इसका ये बतलाया है, यदि ऐसी संभावना हो। क्यों कहा, इसका कारण है, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिश्चरित पीयूष मुद्भित परितस सरिता समन्ति ताजे पिवंत निप अवृतसो निपगाढ़ करना तान्ना स्पृशति असन शोकमोह। क्या तात्पर्य, साधुओं के समूह में जाने से वृंदावन में जाओ, बस साधु के निकट बैठ जाओ, और बैठने से क्या हो, तस्मिन महन मुखरिता, महत जो व्यक्ति हैं उनको तृणलता गुल्म आदमी को देकर के उनकी भक्ति उत्सुक हो जाती है, और वो महन मुखरिता वो खुद ही जैसे कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से नदियां अपने आप बहती हैं, ऐसे संतों के हृदय से द्रवित हो जाता है, उसे मुखरित हरि कथा निकलने लगती है, उस कथा का यदि कोई पान करे तो क्या होगा, उसका क्षुधा तृष्णा भय विपाका इत्यादि जगत की जितने भी ये सभी दूर, शोक मोह भय सब सतंग प्रसंगम वीर्ज संविदौ भवंति ऋत कर्ण रसायन कथा तज्जोसनात आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति। क्या मतलब सतंग प्रसंगम वीर्ज संविदो भवंति ऋत कर्ण रसायन, अपने आप होता, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बस और देखो तो नदी निकली फाउंटेन अपने आप हरि कथा। उनको चाहिए श्रोता, यदि पशु पक्षी भी श्रोता मिल जाए, लता गुल्म भी तृण भी कोई भी मिल जाए और मनुष्य मिल जाए तो और क्या। प्रभुपाद जी बच्चे को देख करके हरि कथा बोलते थे, खाना पीना भूल जाते लोग, किसी प्रकार से बच्चों को भी हटा देते थे, प्रभुपाद बिगड़ जाते थे। ये लड़के को क्यों हटा दिया, कभी हरि कथा बोल रहे हैं, भाव में मग्न है, तो इशारा कर दिए प्रभुपाद जी का खाने का समय हो गया अब हट जाओ, तो हटा देते थे तो बड़े बिगड़ जाते, व्याघात होता था उनकी हरि से, लोग नहीं समझते साधारण। तो वही कहते हैं क्यों ऐसा होता है, तो सतंग प्रसंगम विज्ञ संविदौ, उसमें कोई तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसमें जो हरि कथा सुनता है उनके मुख से उसमें तत्व ज्ञान इत्यादि सब कुछ उसी में रहता है जितना जरूरत है। ज्ञाने प्रयास अब उदपाश्य, पृथक रूप में ज्ञान, ज्ञान में निर्विशेष ज्ञान की तो बात ही क्या, भगवत तत्व ज्ञान, और भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है और भगवान तत्व जीव तत्व इत्यादि पृथक रूप में, उसके लिए प्रयास मत करो। तुम महत्पुरुषों के मुख से जो कुछ हरि कथा सुनोगे उसके लिए तुम्हारे लिए योग्य उचित रूप में उसमें तत्व ज्ञान भरा पड़ा है और वो रसमयी होता है, और अकेले तत्व का ज्ञान बने नीरस हो जाता है। इसलिए जो जरूरत है तो उसमें तो ही है, पृथक रूप में इसके लिए प्रतिष्ठा। नाउ यू कैन ट्रांसलेट
Means bhakti that has some jnana mixed with it. bhakti and bhakti in Nishya Jnana. So, if someone is following the path of Jnana, then it's somewhat privileged. This is not as favorable as doing bhakti, but they have some Jnana privilege. So, we should know that Jnana is of three types. The first type is called Tat Padartha Jnana. The second type is Tvam Padartha Jnana. And the third type, Brahma Jiva Aikya Jnana. So this third type, Brahma Jiva Aikya Jnana, means to be absorbed in the knowledge or conception that Brahma, the absolute truth, and the Jiva, they are absolutely one in all respects. So this is Bhakti Bhakti. It is antagonistic to Bhakti, completely unfavorable, because if everything is one, there cannot be any relationship, and without relationship, there cannot be any service. And therefore, this should be unequivocally rejected. So, Tat Padartha Jnana. Here the word Tat means Bhagavatattva. Bhagavatattva, the non-philosophical knowledge of the principles of Bhagavan, includes also Maya Tattva, his relationship with Jiva Tattva, and all of these things. And the second, number two, Tvam Padartha Jnana means knowledge of oneself, of the Atma Tattva. So, this Padartha Jnana, Tvam Padartha Jnana, this is helpful in the beginning and necessary in the beginning to understand who is God, what I, what is our relationship as a theoretical principle. But it's only helpful in the primary stages of bhakti. And when bhakti begins to mature, then it's not important anymore. So, if jnana is mixed with bhakti, then it's jnana mishra. But if this jnana is jnana, then it becomes uttama bhakti. So, when Vedananda gave the suggestion about jnana mishra bhakti, he gave Brahman evidence from Bhagavad Gita, chapter 18, text 54. Brahma Bhuta, Asanatma, Nasocha Jinakamshati, Samasavishu Bhuteshu, Madhavate, Lamate Kuran. Now, Srila Gurudev explained the meaning of each word, each line, from beginning to end of the verse. So, Brahma Bhuta. What does this mean? It's a stage where someone realizes that the Atma has no path, no sins. It does not, the Atma does not grow old. The Atma is not affected by lamentation, thirst, hunger. So this katha is based on one verse of the Upanishads, describing the attributes of the soul, but in an indirect way, through the things that the soul does not have. So when someone realizes this, they go Brahma Bhuta, and they become Prasanatma, that means they become joyful. So this Brahma Bhuta stage is also called Anavritta Chetan. In other words, the consciousness of the Jiva is not covered by the gunas, three modes of mature nature, any mature coverage. So Brahma Bhuta means Anavritta Chaitana, uncovered consciousness. So, if a jiva is not covered by the mature energy, then at that time he must be saying, Brahma Bhuta Prasanatma Na Sojati. Such a person will not lament. In other words, if they lose something, such as they lose their brother, wife, children, family members, or they lose their wealth or home, then they will not lament at all. And Nakamshati, they have no longings, no hankerings. In other words, he does not think about those things that he does not have. These are the symptoms of Brahma Bhuta. And Samatsaveshu Bhuteshu, he sees all living entities equally. So that doesn't mean that he deals with everyone in the same way. He can see this is a horse, this is an elephant, this is a human being, etc. But from the point of view of the soul, he knows that all the atmas within all the living entities they have the same transcendental nature. So it is equality in that. To give an example, once Ashtabhakya Rishi traveled and came to the palace of Janak Maharaj in Janakpuri. So when he came there, you know, he's cooked in 8 places, so his name is Ashtavakra. So he walks in a very peculiar way, a very curious way. So when he came into the assembly there, the people in that assembly, they began to laugh at his peculiar way of walking. So he was walking with a stick, and he stopped walking, and put his stick down. And he began to laugh. He began to roar at the top of his voice, laughing very, very loudly, more than anyone else. So then, Janak Maharaj asked, "Why are you laughing?" He said, "If I don't laugh, then I'll cry." Because I heard that this was a very learned assembly.
He asked that, "Why you are laughing? You all." First he had a question. And then,
Maharaj answered.
That you are so ugly, but is
you are so dare to come here.
Are you have dare to come here in this assembly, learned assembly?
So first, after Rishi, he asked, "Why are you laughing?" So Janak Maharaj said, "You are so ugly, so deformed, and yet you have the bottle. You dare to come into this assembly." So then, Janak Maharaj asked, "Why are you laughing?" He said, "Oh, I had heard that there was a learned assembly here, but now I discover that I stumbled upon the convention of shoemakers. You know shoemakers? They only know skin. Their knives always cutting, like making things from skin. So this is their only field of expertise." So after that, Rishi said, "You are simply all like shoemakers. Because you only see skin, you are seeing this physical body, but you are not seeing the beauty of the soul within." So then he said, "So I don't want to stay here, I'm going." And he was prepared to leave. But Janak Maharaj very humbly came and requested him to stay and share with him the Atma Tattva Gyan, knowledge of the soul. So the intelligent mind cannot understand the Atma Tattva. In this verse, Sri Krishna said, means that a person who is situated on the platform of Anaprita Chaitanya, they can attain my bhaktim labhate param. My bhakti param, that means parabhakti, pure devotion. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, he rejected it. He said, "This is also external. Why? Because Parabhakti is very high. And if a person is already liberated from the bodily conception of life, from that stage of Pranabhuta, they can enter to the stage of Parabhakti, but only if they have the opportunity for sadhu sangha. And they have not committed any offenses. But if they don't come into sadhu sangha, then they cannot attain this parabhakti. And there's no guarantee also that they will come into sadhu sangha and attain parabhakti." So it happens very often that there are many sadhaks who are doing dhyan sadhana, the cultivation of dhyan. That means the deliberation between matter and spirit body, sadhvijaya. And they come to Vrindavan. But then in Vrindavan, they meet a sadhu, a real sadhu, and they hear some harikatha, and at once, there and then, upon hearing the katha from the lips of a sadhu, they attain Krishna praying. Why? Because they were already liberated. And then, very quickly, this bhakti manifests in their heart. Because their chaitanya is anabrita, it's not covered by so many anaks, unwanted desires. So Śrīla Viṣṇu Thakura and Śrīla Jīva Goswami commented upon this verse. Especially Śrīla Viṣṇu Thakura gives an example how it is that the person with Brahma Buddha, he attains Parabhakti. So if one very small piece of gold will fall into some wooden bowl and moon bowl, cannot discover where it is. But if there's fire and it burns those beings, then what will happen? The beings will be burnt away, and though when it's in fire, it becomes more effulgent, and then you can find it. So Śrīla Viṣṇu Thakura gave this example, and it's an allegory to show that here, the small piece of gold is compared to the Sanvit and Hanini Shakti, which is, can never be destroyed, but it is present, hidden, in the heart of the living entity. So, when a person who has no lamentation and no material desires, but they also have no desire to serve Krishna, no material desire, but also no desire to serve Krishna, but they come into the association of the sadhu by influence of the fire of sadhu sangha, then the dharma, mukha, urdha, this is compared to their brahmanya. Oh, this goes away, and the essence of sabit and hadini, which is as a potential in their heart, it manifests. This is called manbhakti vladatevaram, the attainment of bhakti, very, very easily and quickly. So, how does it take place? See, Narada Rishi, he is explaining Śrīmad Bhāgavatam, Kasmin mahān mukharitān marupīś charitā piyusha śeṣa sarita parita śravanti tāye vivanta dvirtiṣo nirpagāda kāyās tāyās pishan tasana trīt śūdha śokha mohā māyā. Here, Narada Rishi is saying that when we come into the association of a sadhu, then what should you do? Or just sit down there and listen. Because just as in Mount Kailash, there is one lake called the Manasarovar, and from that lake many, many streams and rivers flow down. So simply, from the heart of the sadhu, then the rivers of Harikata are flowing from his mouth. And the living entity, when he comes in touch with that current of Harikata and listens with very intense desire, very strong new capacity, then this river of Harikata, it washes away all hunger, thirst, and lamentation, illusion, and fear. In other words, he transcends the bodily conception of life and he attains bhakti. The same thing has been told in other words by Śrī Kapil Dev, Satapa Sangama Bhavirya Samvito Bhavati Rekhara Rasaya Bhaka Tadyoshin Asu Apavarga Vandani Sadharati Bhakti Tanu Pramishati Canto 3, Chapter 25, Text 25. So, in the association of sadhus, then what should you do? Nothing to do. Just sit down. And automatically, like a fountain, have it transforming by itself from the heart of the pure devotee. So just sit down and listen. And what will happen? The heart will be satisfied. The ears are satisfied. Shraddha, faith in devotional service, awakens in the heart. And simply by listening, the faith matures into Bhava Bhakti Rati, and Rati matures into Prama Bhakti. Śrīla Gurudev gave an example that our native Pushupāya, Ashtokra Satsishman, Bhakti Siddhanta Sazari Thakur, Jara Guru Śrīla Prabhupāda. He would always tell Harikatha, and if no one was there, if only a few small children were there, he would tell them to sit down, and he would tell Harikatha, even to small children. And if anyone would come to say, time for Mahaprasadam, or bringing Mahaprasadam, then Śrīla Bhakti Siddhanta Sazari Thakur would become angry. Why are you disturbing the Harikatha? This is the most important thing. And sometimes, if he'd been speaking to them for a long time, then his servants would come and try to make the children go away. But Śrīla Bhakti Siddhānta Sarathakura, you'll become angry. Why are you taking them away? Understand, now they have absorbed in Harikatha, and from this, all the transcendental benefits of pure bhakti will manifest. So, see, Ramana Dravai, he said, Jnana Shunya Bhakti Sarva-satyasa. When Jnana Shunya Bhakti was rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external, Ramana gave another suggestion. He said, this time he suggested Jnana Shunya Bhakti, bhakti which is devoid of the tendency for the cultivation of knowledge. So then, Ramana gave an example spoken by Chakrabhu Brahma in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14. Jnana Prasa Udapasya Ramanta Eva, Jivanti Sarva Paritam Bhavati Avartan, Stane Stikas Utipatam Tavavat Manoe, Yipraso Vitopia Sitas Tilokam. Meaning is, Jnana Prasa, the endeavor to cultivate Jnana should be Udapasya, given up completely. What kind of Jnana? What to speak of the impersonal Jnana? What to speak of Bhagavatattva Jnana? Even the knowledge of Krishna's opulence, this should also be rejected and given up. All knowledge of Krishna's opulence. And Jivanti Sarvamaritam Bhavati Avata. Just sit down and listen to the current of Harikata coming from the mouths of the sat, pure devotees, those who are transcendentally situated. Now, someone may object. Without the Bhagavatattva Jnana, Aishwarya Jnana, how can you do bhakti? So, Srila Gurudev explained. Just listen to Harikata. Listen to the sweet pastimes of Krishna. And you will come to realize that all types of Bhagavatattva Jnana, everything is already included in that Harikata. No need for the separate endeavor to know all of these things.
Kamal Krishna. At a Sundar Bangla Kirtan Karto Pad, Bhaktivinoda Thakur, Athva Jharkar. Sundar correct word.
Thank you.
ज्ञान मिश्रा भक्ति भी बाह्य है तो राय रामानंद ज्ञान शून्य भक्ति सात दोषा। ज्ञान शून्य वो जो तिब्बत प्रकार का ज्ञान हमने कहा उसे जो शून्य रहित भक्ति है और उसके लिए उदाहरण दिया ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंत जन्म कृतां भवदीय वर्तां स्थानी स्थिता तनुवांग स्तुति गतां तनुवांग मनोभी जे प्रायसु अजित जीतो अपि चयतव्य। ज्ञाने प्रयासम उपास्य ज्ञान के लिए जो चेष्टा है उसको संपूर्ण रूप से प्रत्याग करो। जीव गोस्वामी कहते हैं यहां भगवत पदार्थ का ज्ञान तंग पदार्थ का ज्ञान माया तत्व का ज्ञान और जितने तत्व हैं यहां तक कि भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान इनको भी छोड़ करके उद्पाशन उसकी चेष्टा को संपूर्ण रूप से छोड़ करके नमंत एव जीवंती वो भौदीय वार्ता स्थाने स्थिता जहां आपकी कथाएं लीला कथाएं होती हैं। ओ लीला कथा कैसी है वो वशीकरण मंत्र है भगवान की लीला कथा है और उसमें भक्तों का चरित्र ये कैसी है वशीकरण मंत्र है। धर्म सुनिष्ठता विश्व सेम कथा सूचा नौ दुपादयम यदिरति श्रमय श्रम है बेकार लीला कथा भ्राता सत्सु याद है कि तुम्हारा द्वादश स्कंद का नहीं है कहां गए द्वादश स्कंद में है भगवान की लीला कथाएं श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों में निबद्ध है उसमें आनंद है रस है और उसको सत्सुरम जो वैष्णव लोग होते हैं उसका आस्वादन करते हैं और उसके श्रवण मात्र से ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। कैसे भक्ति पुरुष वश भक्ति पुरुषो वश भक्ति के वशीभूत पुरुष लीला कथा के वशी लीला कथा यह है भगवान को वशीकरण में मंत्र है इसलिए अहं भगवता भगवत भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र दीज कौन कहा महर्षि दुर्भाषा भगवान से उन्होंने प्रार्थना की जे चक्र को निवारण कीजिए उन्होंने ऐसा नहीं संभव हो सकता मैं भक्तों के पराधीन हूं जाओ भक्त के यहां जहां पर अपराध किया वहां जाओ मैं नहीं कुछ कर सकता मैं स्वतंत्र इव द्विज मैं स्वतंत्र इव माने क्या पतंत्र रहते हुए भी मैं स्वतंत्र हूं भक्तों के यहां वो हमको अपनी लीला कथाओं इत्यादि के माध्यम से हमको वशीभूत कर रखा है। सतंग प्रसंग में भी यही बतलाया गया, अजित जो भगवान है जीत हो जाते हैं। यहां पर भी बतलाया है स्थानी स्थिता तनुवांग मनोभी, जो लोग ज्ञान के लिए पृथक रूप में कोई प्रयास नहीं करके क्या करते हैं, जहां पर हरि कथा होती है उसको प्रणाम करते हैं, सन्मुख हरितांग अपने आप निकलती रहती हैं फाउंटेन की भांति, झरने की भांति, उन कथाओं को सुन करके बहुत ही अबाता। कोई तीर्थाटन में नहीं जाते, तीर्थों में जहां हरि कथा होती है स्थाने स्थिता, उसी स्थान में स्थित हो करके श्रुतिगतान जो अपने आप अपने कानों में आ रही है कथा, बिना पूछे बिना कुछ कहे बिना परिश्रम के बिना पैसे के मूल्य के आ रही है, तनवांग मनोभी, तन से मन से वचन से भावना से जो आदर करते हैं। कैसे आदर करते हैं, हरि कथा को सुनते हैं कि धन्य है आज मेरा जीवन चरितार्थ हो गया, ऐसे महापुरुष का संग है जो कथा को कह रहे हैं और उन लीला कथाओं का मन से चिंतन करते हैं, मुनि लीला कथाओं का चिंतन करते हैं, भावना के द्वारा उन्हीं की भावना करते हैं उन लीला कथाओं का, जो अजित भगवान है ऐसे भक्तों के द्वारा लीला कथाओं के श्रवण के द्वारा उसके वशीभूत होता है। इसलिए पृथक रूप में कोई चीज की जरूरत नहीं है। तब एक सामंजस्य कर रहा है, शास्त्र तो सभी ठीक कहते हैं और जीव गोस्वामी भी शास्त्र की बातें कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस, भक्ति की जहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बोलकर के आलस मत करो, सिद्धांत सीखो और भक्ति स्वामी सिंधु में भी कहा गया है शास्त्रे युक्त च निपुणा, शास्त्र युक्ति में जो निपुण हो, चैतन्य चैतामित में भी कहा गया है शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी तारे तारे संसार। अरे इसके बाद वाला शास्त्री युक्ति नहीं दृढ़ श्रद्धावान तो ये तो देखते हैं कि ये शास्त्र की सिद्धांत में जानना जरूरी है, तो फिर इसका सामंजस्य कैसे होगा, सामंजस्य जीव गोस्वामी के विचारों से ही होगा। अलग से पृथक रूप में तत्व ज्ञान की चेष्टा मत करो पाने के लिए, भगवान की कथाओं में लीला कथाओं में जैसे श्रीमद् भागवत में दामोदर लीला दाम बंधन लीला, किंतु इसमें कितने तत्व गहराई से हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी लीला दिखलाई और उसमें कितने गंभीर तत्व अपने आप हैं, इसलिए पृथक रूप में कोई स्वतंत्र रूप में उसके लिए चेष्टा मत करो, किंतु वैष्णव के मुख से लीला कथाएं और वैष्णव का चरित्र यदि हो तो उसको सहज रूप में सुनना चाहिए। इसीलिए ज्ञाने प्रयास मधुमा उत्पास्य नमंत एव, उन कथाओं का आदर करते हैं, कथावाचक का आदर करते हैं, उन कथाओं का स्मरण करते हैं लीला कथाओं का, और अपने आप उनको जितनी जरूरत है तत्व ज्ञान की बातें उनमें आ जाती हैं, पृथक रूप में कोई जरूरत नहीं है, यही इसका सामंजस्य है।
Right. So, about the right, he quoted this verse. But it seems that they're
that wants to reach other, that there's a contradiction. So we see that Krishna Das Kaviraj Goswami, he says, Siddhanta Vayachite Nakarayas, Yahweite Krishna Lagi, Sudhiramanas. When it comes to understanding Siddhanta, don't be lazy. You should try to know Siddhanta. Because when we know Siddhanta, at that time, the mind will become steady and very much attached to Krishna. So Krishna Saraj, he said, learn Siddhanta. Sri Bhakti Rasa Vijay Sidhu, there is a verse by Srila Rupa Goswami Pada.